नमस्कार भारत, आज है 9 अगस्त, दिन मंगलवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ 16 साल से संघर्ष कर रही इरोम शर्मिला आज खत्म करेंगी अपना अनशन।
शर्मिला भी एक आदमी है हमारी तरह, उसको भी बहुत ख्वाहिश है मेरी जिंदगी में ये करूं वो करूं, वो भी एक लड़की है, वो उसको भी प्यार आता होगा।
रिपब्लिकन पार्टी के 50 राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक पत्र में कहा डोनाल्ड ट्रंप सबसे लापरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति साबित होंगे। रियो ओलंपिक में भारत के लिए बेहद खराब रहा कल का दिन, स्टार शूटर अभिनव बिंद्रा भी पदक से चूक गए।
नहीं, प्लान तो नहीं कर सकते। You know, once you want changes, mind changes, everybody changes, and I'm sure आप भी change करते हो।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। मणिपुर से आफ्सपा हटाए जाने की मांग को लेकर बीते 16 सालों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला चानू आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करने जा रही हैं। इम्फाल के मालोम गांव में 10 लोगों के मारे जाने के बाद इरोम ने 5 नवंबर 2000 को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। अब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया है। सीरिया के एलेपो शहर में लड़ाई और तेज हो गई है। सेना और विद्रोही गुट शहर के भीतर अपने अपने बलों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बीते कुछ सप्ताह में रूसी सेना के हवाई हमलों की मदद से सीरियाई सेना ने विद्रोहियों की घेराबंदी की थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में विद्रोहियों ने सेना की घेराबंदी तोड़ने का दावा किया है। एलेपो पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ही पक्ष सैकड़ों नए लड़ाकों को शहर में ला रहे हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों के गठबंधन सीरियन राष्ट्रीय परिषद से जुड़े अनस अल अब्दाहा कहते हैं, हमारे लड़ाके सिर्फ सीरियाई सैनिकों का ही मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हिजबुल्ला के मिलिशिया, ईरानी और रूसी सैनिकों का भी मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में घेराबंदी तोड़ना और अब हमारा शहर को मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ना हर मुमकिन तरीके से कोई चमत्कार ही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि क्रांतिकारी बलों ने एक होने का फैसला किया है और हमने एकजुट होकर काम किया है। बीबीसी को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो सीरिया में विशेष ब्रितानी सैनिकों की मौजूदगी की पुष्टि करती हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि ये सैनिक फ्री सीरियन आर्मी के विद्रोहियों के साथ काम कर रहे हैं। विद्रोहियों का ये समूह इस्लामिक स्टेट से मुकाबला कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विशेष सैन्य दस्तों के ये सैनिक देश के पूर्वी हिस्से में एक सैन्य अड्डे पर ड्यूटी कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो विशेष सैन्य दस्तों के अभियानों के बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। इन विशेष सैनिकों को आम सैनिकों की तरह लागू कराने के लिए जरूरी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह पिछड़ने के बाद अब अपने चुनाव अभियान का रुख अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया है। डेट्रॉइट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यदि नवंबर में वे राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार लागू करेंगे। ट्रंप ने कॉरपोरेट टैक्स और अन्य टैक्सों में कटौती का वादा भी किया है। वहीं जॉर्ज बुश के प्रशासन में काम करने वाले रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े 50 शीर्ष सलाहकारों ने एक खुले खत में डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया है। अपने पत्र में पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो वो अमेरिका के सबसे लापरवाह राष्ट्रपति साबित होंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ 16 साल से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला आज अपना अनशन खत्म कर रही हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला ने इन 16 सालों में अपना ज्यादा वक्त एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में व्यतीत किया है। साल 2000 में मणिपुर के मालोम गांव में कथित असम राइफल्स की गोलियों से 10 आम नागरिकों की मौत के बाद ही इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। अब वो चुनाव के रास्ते आफ्सपा में बदलाव लाना चाहती हैं और शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हैं। सुनिए इम्फाल से बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट।
16 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो रहा है। आखिरकार इरोम शर्मिला चानू आज सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून के खिलाफ अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगी। 5 नवंबर सन 2000 वो आखिरी दिन था जब इरोम ने खाने का स्वाद चखा था। भूख हड़ताल तोड़ने का इरोम शर्मिला का फैसला अचानक ही आया और उन्होंने अभी तक अपने परिवार तक से इसके बारे में बात नहीं की है। मानवाधिकार कार्यकर्ता बबलू लोइंगटोंगबम उन चंद लोगों में से हैं जो अस्पताल में नज़रबंद शर्मिला से उनके नए फैसले के बारे में थोड़ी बहुत बात कर पाए हैं।
15 मिनट के लिए उसको बाहर आने देता है कोर्ट ऑर्डर में कि उसको थोड़ा बहुत का सनशाइन लेने के लिए, तो उसी टाइम हम उससे बातचीत हो पाया। उसने वो बताया क्या कि मैं चाहे तो उसी दिन ही ख़त्म कर सकते हैं, मगर 9 तारीख तक हम टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम ये लोग क्या सोचता है, सिविल सोसाइटी क्या सोचता है पता करना चाहता है। थोड़ा बहुत ऐसा कन्वर्सेशन होने के बाद वो लोग उसका गार्ड लोग हमको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप बात कर नहीं सकते। हमने बोला ये तो प्रिजन नहीं है, ये तो हॉस्पिटल का कंपाउंड है। एंड शर्मिला सेड वेरी सेंटिमेंटली, माई एग्जिस्टेंस इज लाइक दिस, हम तो अभी तक प्रिजनर हैं, तुम लोग समझ सकता है मैं कैसा जी रहा है।
इरोम शर्मिला एक खास किस्म की रस्म अदायगी पिछले 16 सालों से करती आई हैं। हर 15 दिन पे उन्हें अस्पताल के जेल वार्ड से कोर्ट ले जाया जाता है जहां जज उनसे पूछते हैं कि क्या वो भूख हड़ताल तोड़ेंगी। हर बार इरोम का जवाब ना ही होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जज को जवाब देने के बाद वो अपनी हड़ताल तोड़ने का इरादा रखती हैं, लेकिन बरसों से उनका साथ देने वाले और संघर्ष करने वाले मोमोन लाइमा जैसी महिलाएं भी उनके फैसले से खफा नजर आ रही हैं।
माना वह हंगामा हंगामदा है बसे अकोई बाजामियांगी मामा वही भी अकोई किसी लाइबक थी बनी।
इरोम शर्मिला ने हमसे एक बार भी बात नहीं की भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला करने से पहले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है मणिपुर के लिए, हमारे लिए। हम तो उनकी माँ की तरह हैं, हमने बरसों से उनका साथ दिया है। वो बहुत असाधारण है, लेकिन अचानक ये फैसला क्यों?
पूरे शहर में मीडिया वालों कार्यकर्ताओं की भीड़ है, पर फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। इसी सन्नाटे में इरोम के समर्थन में भी कुछ आवाजें सुनाई दे जाती हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय की ये छात्राएं पूरी तरह से इरोम के साथ हैं।
हम तो एक दिन भी अगर अच्छा खाना नहीं मिलता तो हम कंप्लेन करते हैं। वो तो इतने साल तक फास है। शर्मिला भी एक आदमी है हमारी तरह, उसको भी बहुत ख्वाहिश है मेरी जिंदगी में ये करूँ वो करूँ। वो भी एक लड़की है, वो उसको भी प्यार आता होगा, उसको पूरा राइट है।
Democracy is of the people by the people and for the people. So Sharmila will definitely even stand for the people.
खैर, आज का दिन इरोम शर्मिला के लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगा। उनके नाक से लगी रहने वाली नली की अब शायद भूख हड़ताल तोड़ने के बाद उनको जरूरत नहीं होगी। थोड़ी सी धूप लेने के लिए उन्हें अस्पताल से मोहलत में मिले 15 मिनटों का इंतजार नहीं करना होगा। जब भी इरोम रिहा होती हैं तो कोर्ट के साए से बाहर भी अपनों से मिल पाएंगी, लेकिन इन अपनों में उनकी माँ शामिल होगी या नहीं किसी को मालूम नहीं। आखिर माँ ने अफसपा कानून खत्म न होने तक बेटी से न मिलने की कसम जो खाई थी। वंदना, BBC, इम्फाल।
इरोम के भाई इरोम सिंघाजीत अपनी बहन के संघर्ष का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने BBC को बताया कि अनशन की खबर सुनकर जब वो बहन से मिलने पहुंचे थे तो इरोम ने अपने इरादे किन शब्दों में बयां किए थे।
मैंने भी वहाँ जेल पे जाकर मैंने मिला था, वो 11 तारीख है नवंबर का। उसी दिन शर्मिला ने मुझे बताया, भैया मैं एक मैतई मणिपुरी नारी है। मैंने मेरा डिसीजन बहुत बहुत सोच के सोचने के बाद मैंने फाइनलाइज किया, डिसाइड किया। तो मुझे कुछ करेज देना हो तो मेरा पास आ जाओ, और मुझे वापस करने के लिए हो तो आज की विजिट वो आखिरी होना चाहिए। तो उसी दिन मैंने भी प्रॉमिस किया था, ठीक है तू भूख हड़ताल चलते रहो, आपकी आखिरी सांस तक तुम्हारा करेज तुम्हारा हिम्मत साथ रहो, मैं भी आज की बात तुम्हारा साथ रहूँगा। वैसे ही करके मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर था उसी समय एक NGO में, मैंने मेरा काम छोड़ के उसके साथ साथ आज तक आया था।
ये थे इरोम शर्मिला के भाई इरोम सिंघाजीत। आज सबकी नजरें कोर्ट में होने वाली घटना पर रहेगी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के 50 राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के दस्तखत वाले एक खुले पत्र में ट्रंप के बारे में कहा गया है कि वो देश के सबसे लापरवाह राष्ट्रपति साबित होंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक चुनावी सभा में कहा कि वो अमरीकी अर्थव्यवस्था में तेजी लाएंगे, जिसकी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने निंदा की। सुनिए दिलनवाज पाशा का ब्यौरा।
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान को अब अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया है। डेट्रॉइट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कर सुधार करेंगे और कॉरपोरेट टैक्सों में कटौती के लिए नए नियम लाएंगे। ट्रंप ने कहा,
"The reforms I have outlined today are only the beginning."
जिन सुधारों की मैं बात कर रहा हूँ वो तो बस शुरुआत हैं। जब हम अपने करों, व्यापार, ऊर्जा और नियामक नीतियों में सुधार लाएंगे तो हम अमेरिका की समृद्धि के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एक नए अध्याय की जरूरत है। अपने भाषण के दौरान ट्रंप को प्रदर्शनकारियों का सामना भी करना पड़ा। व्यापार के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि वो उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रांस पैसिफिक समझौते से भी पीछे हट जाएंगे। अमेरिकी सरकार इस अहम व्यापार समझौते पर फिलहाल काम कर रही है। ट्रंप ने अपने भाषण में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शहर उनकी आर्थिक नीतियों के नाकाम होने का जीता जागता उदाहरण है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिलेरी क्लिंटन बीते जमाने की उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव अभियान भविष्य के लिए है। वहीं फ्लोरिडा में अपने चुनावी भाषण में हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की नीतियां सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं। हिलेरी ने कहा,
His tax plans will give super big tax breaks.
उनकी टैक्स योजनाएं उन जैसे ही बड़े उद्योगपतियों और अमीर लोगों को बड़ी टैक्स राहतें देंगी। वो वॉल स्ट्रीट के लिए लागू नियम को वापस लेना चाहते हैं। वो ग्राहक वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो को खत्म करना चाहते हैं, जिसने अमरीकियों के लिए अरबों डॉलर बचाए हैं। वहीं ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है। रिपब्लिकन पार्टी के सुरक्षा विशेषज्ञों के एक 50 सदस्यीय समूह ने एक खुले खत में ट्रंप की जमकर आलोचना की है। इस समूह ने अपने पत्र में कहा है कि वो ट्रंप के लिए मतदान नहीं करेंगे और यदि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो देश के सबसे लापरवाह राष्ट्रपति साबित होंगे। समूह ने अपने पत्र में कहा है कि ट्रंप के पास राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी अनुभव, मूल्य और चरित्र नहीं है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता ट्रंप के प्रति अपनी असहमति जता चुके हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अमेरिका की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पहले निदेशक जॉन नेग्रोपोंटे, पूर्व उप विदेश मंत्री और विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट पी जॉलियक जैसे वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता भी शामिल हैं। इस पत्र को ट्रंप के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच पुल बन सकता है। महबूबा ने सोमवार को राज्य के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की थी। सुनिए निखिल रंजन की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मानना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच पुल बन सकता है। महबूबा ने कल दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद कहा कि कश्मीर में एक महीने से जारी तनाव बातचीत के जरिए खत्म हो सकता है।
तकरीबन एक महीना हो गया और 50-55 लोग मारे गए, तो मुझे लगता है ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं। तो अगर बातचीत करने से जम्मू कश्मीर के हालात सुधर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर दोनों मुल्क, जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, एक पुल की शक्ल बन सकता है बजाय कि जो झगड़े का बायस बना है।
कश्मीर में बीती 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में हुई मौत के बाद से तनाव बना हुआ है। महबूबा ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात में राज्य की ताजा स्थिति की जानकारी दी। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। महबूबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह समस्या के समाधान की पहल करनी चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिसको जिनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, वो जो इस वक्त की सिचुएशन है इसको एज अ मौका लेंगे, एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जख्म है उनपे मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। एक बातचीत का सिलसिला शुरू होगा ताकि जो वाजपेयी जी ने एक सिलसिला शुरू किया उसको आगे चलाया जाए।
उधर कल कश्मीर का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि कश्मीर में बीते एक महीने से पूरा सिस्टम ठप है।
What is happening, sir? For 30 days curfew, I have not seen in my lifetime in an independent India.
सर क्या हो रहा है? अपनी जिंदगी के दौरान आजाद भारत में मैंने 30 दिन का कर्फ्यू नहीं देखा है। सब कुछ पंगु हो चुका है, सारा प्रशासन, सारे शिक्षण संस्थान, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम चुप कैसे रहें?
सीताराम येचुरी के शब्द। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की।
ये गुजारिश करूंगा जो हमने पहले भी कहा था कि एक आध दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग करें और उस ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपनी सहानुभूति भी, अपनी हमदर्दी भी और कुछ हल निकालने की कोशिश भी करें और उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाना चाहिए।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है।
गुलाम नबी साहब ने, सीताराम जी ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में मैं बात करूंगा और उससे मैं अप्रोप्रिएट जब भी कल के या परसों कब भी चर्चा हो सकती है हम तैयार है, चर्चा हो जाए।
विपक्ष कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का पक्ष जानना चाहता है। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी मानती हैं कि राज्य के लोगों से बातचीत की सार्थक पहल प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री के जवाब का।
निखिल रंजन रिपोर्ट सुना रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मौर्य 20 साल तक बीएसपी में रहे और इस दौरान वो बीजेपी के कटु आलोचक थे। जानकारों के मुताबिक मौर्य को पिछड़े वर्गों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश के मद्देनजर पार्टी में शामिल किया गया है। 22 जून को बीएसपी छोड़ने के बाद से ही मौर्य राजनीतिक शरण की तलाश में थे और आखिरकार उन्होंने भाजपा में शरण ली। एक रिपोर्ट के साथ समीरात्मज मिश्र।
यूं तो पिछले कुछ दिनों से ये बात तय मानी जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब सिर्फ बीजेपी के ही दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राज्य कार्यकारिणी की बैठक तक इंतजार करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी से नाता तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से लेकर खुद की पार्टी बनाने तक की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वहीं पिछले कुछ समय से बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाए हुए है। ऐसे में शायद स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी की कुंडली मिल गई और दोनों साथ हो लिए। लेकिन सवाल उठता है कि अरसे से बीजेपी और उसकी विचारधारा को कोसने वाले मौर्य को बीजेपी कैसे स्वीकार कर पाएगी। बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक इसका जवाब कुछ इस तरह देते हैं।
आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि ऐसे लोग जो पिछले 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कटु आलोचक थे वो भारतीय जनता पार्टी की आ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम उनको ग्राह्य हो रहे हैं और यही हमारे विस्तारीकरण का कारण है।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी में लाने की एकमात्र वजह ये बताई जा रही है कि इससे मौर्य और कुशवाहा समुदाय के लोगों को पार्टी अपने साथ ला सकेगी। पार्टी ने इससे पहले इसी समुदाय के केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी को इस रणनीति से जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
इनको लग रहा है कि अगड़ी जातियां तो हमारे साथ जेल में आई, जहां तक उसका सवाल है ये तो बुरी तरीके से हाथ धो के लगे हुए हैं बिल्कुल, कि किसी तरह दलितों का वोट और अति पिछड़ों का वोट इनको लग रहा है कि वो दूसरी जगह से हमें मिल सकता है।
यूपी बीजेपी में पिछले काफी समय से आंतरिक मतभेद भी सुनाई पड़ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये बढ़ता ही जा रहा है। जानकार कहते हैं कि खासकर पार्टी जब से दलितों और पिछड़ों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रही है तब से सवर्ण मतदाता कुछ ठकासा महसूस कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद से ये स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों झांसी में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दिखा, जब पार्टी के कई बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे। इनमें कुछ तो ऐसे भी थे जिनके नामों की चर्चा अक्सर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर होती है, बहरहाल जानकारों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में शामिल होने से उन्हें भले ही राजनीतिक ठिकाना मिल गया हो, लेकिन बीजेपी के पुराने ठिकानों के डिगने का खतरा भी बढ़ गया है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
जयपुर के करीब नगर निगम द्वारा संचालित हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में गायों की मौत का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दखल के बाद नगर निगम और प्रशासन अब हरकत में आया है, लेकिन जुलाई से लेकर अब तक यहां करीब 1500 गायें दम तोड़ चुकी हैं। सुनिए आभा शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर के निकट नगर निगम द्वारा संचालित हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में गायों की मौत का सिलसिला कल भी जारी रहा। यहां अव्यवस्था का आलम बीते दिनों कर्मचारी हड़ताल के साथ शुरू हुआ, फिर बारिश ने जैसे गौवंश पर और कहर ढा दिया। बाड़ों से पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से बहुत सी गायें कीचड़ में धंसकर निकल नहीं पाईं। जुलाई से अब तक यहाँ करीब 1500 गायें दम तोड़ चुकी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को केंद्र के हालात पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत ने बताया,
जी गायें तो वहाँ पे रोज ही 30-35-40 रोज ही मरती है। उस दिन भी थी अलग अलग बाड़ों में।
और आपके हिसाब से अभी तक अगस्त माह में और जुलाई में कितनी गायों की मौत हो चुकी है?
वो आंकड़े तो उन्हीं के पास ही है, आंकड़े तो दो साल वाले ही दे सकते हैं, लेकिन जुलाई के अंदर 1000 से ऊपर गायें मरी हैं।
जी,
और अभी शुरू के 4 दिन में 216।
गौरतलब है कि राजस्थान में एक विशेष गौपालन विभाग भी है, मगर गौपालन और नगरीय विकास मंत्रालय गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहे और गायें मरती रहीं। सरकार ने पुनर्वास केंद्र के उपायुक्त और प्रभारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उधर इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। शहर कांग्रेस ने कल इस मामले में राज्य सरकार और नगर निगम के खिलाफ FIR दर्ज करने की अर्जी लगाई। गौरक्षक का मुद्दा कांग्रेस को भी प्रिय है? इसके जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने BBC को कहा,
प्रधानमंत्री जी 2 दिन में 2 बार बोले हैं कि गौरक्षक के नाम पर कोई गुंडागर्दी ना करे, उस बहुत उनको क्रोध होता है, बहुत गुस्सा उनको आता है, लेकिन राजस्थान जयपुर सरकारी गौशाला में जो हजारों गाय मर रही है उस पर गुस्सा उनको नहीं आ रहा है। क्या एक्शन लिया उन्होंने सरकार के खिलाफ, क्या वो करना चाहते हैं? आज पार्लियामेंट में सवाल उठा है तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए छोटे मोटे 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद आके जवाब देना चाहिए। करोड़ों रुपया मिल रहा है वो कहाँ जाता है, कौन उस पैसे को खा रहा है?
इस केंद्र पर 8000 से अधिक गौवंश हैं। मुख्यमंत्री राजे फिलहाल जयपुर से बाहर हैं और लौटने पर इस केंद्र का दौरा करेंगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपने वाली है। संभव है तब गायों की मौत के पीछे का वास्तविक कारण सामने आए। जयपुर से आभा शर्मा।
और अब आज के अखबारों की समीक्षा। दिलनवाज, तमाम अखबारों के साथ आप स्टूडियो में हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताइए आज के अखबार।
जी अमरीश, कल रियो ओलंपिक में भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया और आज इसकी छाप सभी अखबारों में दिखाई दे रही है। लगभग सभी अखबारों ने उनकी तस्वीरें प्रकाशित की हैं। इसके साथ लोकसभा में प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का GST पर दिया बयान भी सभी अखबारों में है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टैक्स आतंकवाद को खत्म कर देगा GST। कश्मीर में जारी कर्फ्यू के 30 दिन हो गए हैं और संभवतः ये देश का सबसे बड़ा लंबा कर्फ्यू है। इसी पर दैनिक भास्कर ने CRPF के DG से साक्षात्कार किया है। सवाल किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल कब बंद होगा? तो DG साहब ने जवाब दिया, ये तो वही बात हुई कि कोई पूछे कि पत्नी को पीटना कब बंद करेंगे। और कश्मीर में ही जो सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे जुड़ी ये खबर आज के द हिंदू अखबार में है। फिल्म कश्मीर की कली ने कश्मीर को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी। इसी की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के चेहरे पर पैलेट्स लगी दिखाई गई हैं कार्टून में।
जी बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। समय कम है, रियो ओलंपिक की चर्चा कर लेते हैं। रियो में कल भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पहले गगन नारंग 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में जगह नहीं बना सके, वहीं भारत के स्टार खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा फाइनल में तो पहुंचे लेकिन पदक नहीं जीत सके। भारतीय हॉकी टीम अंतिम क्षणों में गोल खाकर जर्मनी से हार गई और तैराकी में साजन प्रकाश और शिवानी कटारिया का अभियान समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, भारतीय महिला हॉकी टीम भी ग्रेट ब्रिटेन से 3-0 से हार गई। सुनिए वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम की रियो से ये रिपोर्ट।
BBC ओलंपिक रियो अपडेट।
मेहनत और लगन के अलावा
खिलाड़ी को शिखर तक पहुंचने में भाग्य की भी जरूरत होती है और रियो की शूटिंग रेंज पर ये बात सोमवार को एक बार फिर साबित हो गई। फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अभिनव बिंद्रा 7वें से 5वें और फिर दूसरे स्थान तक भी पहुंच गए थे, लेकिन दो खराब शॉट की वजह से पीछे खिसक गए और फिर बात आकर रुकी शूटआउट पर, जिसमें उनके साथ थे यूक्रेन के सिरेह कुलिश, लेकिन तब शूटआउट के एक खराब शॉट ने बिंद्रा को चौथे स्थान पर ला खड़ा किया। 3 बार के ओलंपिक फाइनलिस्ट और बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बिंद्रा ने लंदन के खेलों के बाद रिटायर होने की बात की थी, लेकिन फिर रियो गेम्स के लिए तैयार हो गए थे। तो क्या भारतीय खेल प्रेमी उन्हें अगले खेलों में टोक्यो में देखेंगे?
नहीं, प्लान तो नहीं कर सकते। You know, one changes, mind changes, everybody changes. I'm sure आप भी change करते हो, जो जैसे आप 10 साल पहले थे, आप 10 अब नहीं हो. One keeps changing, change is a constant in life.
बिंद्रा की तरह भारतीय हॉकी टीम भी खेल समाप्त होने से कुछ सेकंड पहले एक गोल खाकर 1-2 से जर्मनी से हार गई। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हुए भारतीय खिलाड़ी आखिर में गोल खाने की अपनी पुरानी आदत को ना बदल सके। जर्मनी के लिए क्रिस्टोफर कूर और निकलस वेलन ने 1-1 किया, जबकि रुपिंदर पाल सिंह ने 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर द्वारा गोल दागा। मंगलवार को भारतीय टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी, जबकि मुक्केबाज विकास कृष्ण 75 किलो वर्ग में अमेरिका के चार्ल्स कॉनवेल से मुकाबला करेंगे। नॉरिस प्रीतम, BBC, रियो ओलंपिक्स, ब्राजील।
रियो ओलंपिक का रंग भारतीय क्रिकेट टीम पर भी चढ़ा नजर आ रहा है। सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
ब्राजील में जारी 31वें ओलंपिक खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, रोइंग और निशानेबाजी में हिस्सा लेंगे। एक तरफ जहां भारत के खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है, वहीं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज से सेंट लूसिया में तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। भारत के कप्तान विराट कोहली भी इन दिनों ओलंपिक खेलों पर नजर बनाए हुए हैं और उनका इरादा यूसिन बोल्ट की रेस देखने का है।
बिल्कुल, ओलंपिक्स हम लोग रोज शाम को जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी स्विमिंग बहुत पसंद है, डाइविंग पसंद है, ऑब्वियसली ट्रैक एंड फील्ड तो सबका मोस्ट फेवरेट इवेंट रहता है। और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम 14th को ट्रैवल करेंगे, तो बोल्ट इज रनिंग ऑन द 14th, तो हम लोग मिस नहीं करना चाहते, तो वो टाइमिंग्स फिगर कर रहे थे। तो कई लोगों के पास पहले से ही टाइमिंग है कि हम इतने बजे लैंड करेंगे, इतने बजे होटल पहुंचेंगे और जाते ही देख सकते हैं।
यूसेन बोल्ट के दीवाने विराट कोहली भी। उधर रियो में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में आज भारत के अतानु दास राउंड ऑफ 32 में हिस्सा लेंगे। वहीं मुक्केबाजी के 75 किलो भार वर्ग में आज भारत के विकास यादव पहले दौर में अमेरिका के चार्ल्स कॉनवेल के खिलाफ मुक्केबाजी के रिंग में उतरेंगे। विकास यादव साल 2010 में ग्वांगझू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उधर कल अंतिम क्षणों में जर्मनी से 3-2 से हारने वाली भारतीय हॉकी टीम आज अर्जेंटीना का सामना करेगी। वहीं रोइंग में आज भारत के दत्तू भोकानल पुरुष एकल स्कल्स में क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। निशानेबाजी में आज ही भारत की हिना सिद्धू 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपना निशाना साधेगी। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज से सेंट लूसिया में तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जबकि दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। उल्लेखनीय है कि तब भारत के गेंदबाज अंतिम दिन केवल 2 विकेट ही हासिल कर सके थे, लेकिन कप्तान विराट कोहली इससे चिंतित नहीं हैं।
उससे सीख यही मिलती है कि हमें अपनी एबिलिटी को डाउट नहीं करना चाहिए आगे जाते हुए, क्योंकि जैसे कई लोग बोलेंगे कि बॉलर्स विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन बॉलर्स को हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं। बैट्समैन की 1-2 इनिंग खराब जाती है, फिर भी बोलते हैं चलो अभी चांस है। तो आई थिंक एज बॉलर्स सबको रियलाइज हुआ है कि हमने 36 विकेट्स लिए 4 इनिंग्स में, और आगे भी हम वी आर गुड इनफ हर मैच में 20 विकेट और मैच जिता सकते हैं।
तो बीता सप्ताह भारतीय क्रिकेट टीम और ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सप्ताह क्रिकेट और ओलंपिक खिलाड़ियों के सितारे बदलेंगे।
आदेश कुमार गुप्त। सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
मणिपुर से आफ्सपा हटाए जाने की मांग को लेकर बीते 16 सालों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला चानू आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करने जा रही हैं। सीरिया के एलेपो शहर में लड़ाई और तेज हो गई है। सेना और विद्रोही गुट दोनों ही शहर के भीतर अपने बलों की संख्या बढ़ा रहे हैं। BBC को ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो सीरिया में विशेष ब्रितानी सैनिकों की मौजूदगी की पुष्टि करती हैं। अमेरिका ने फिलीपींस में ड्रग तस्करी करने वाले सैकड़ों लोगों की न्याय प्रक्रिया को दरकिनार कर गोली मारे जाने की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।